معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے. معزز نابینا خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے عمران سیریز کا ناول بلو برڈ گروپ. اس کے مصنف مظہر کلیم ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف. ہوٹل گرینڈ کے وسیع و عریض لان میں اس وقت رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی. چونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا، اس لیے سب مرد گرم کے بجائے عام سوٹوں میں اور تمام عورتیں گرمیوں کے مخصوص لباس میں ملبوس تھیں. ہر سال گرمیوں کے آغاز پر ہوٹل گرینڈ میں ایک جشن منایا جاتا تھا اور پورے ملک سے اعلیٰ طبقے کے افراد اس جشن، جسے جشن بہارا کا نام دیا جاتا تھا، میں شمولیت کے لیے کئی ماہ پہلے ایڈوانس بکنگ کرا لیا کرتے تھے. کیونکہ اس جشن میں شمولیت بھی سماجی مرتبے کی بلندی کا باعث سمجھی جاتی تھی. باکیشے سیکرٹ سروس بھی ہر سال اس جشن بہارا میں باقاعدگی سے شمولیت کرتی تھی، بشرطیے کہ وہ ملک میں موجود ہوں. لیکن جو ممبرز موجود ہوتے تھے وہ بہرحال اس جشن میں ضرور شرکت کرتے تھے، کیونکہ یہاں ہر طرف پھولوں کی بہاریں ہوتی تھیں اور ماحول انتہائی بھینی بھینی خوشبو سے مہک جاتا تھا. ہوٹل گرینڈ کے منتظمین نے اس لان کے چاروں طرف خصوصی طور پر ایسے پودے کثرت سے لگائے تھے جن کے پھول تیز خوشبو بکھیرتے رہتے تھے. ان کے بعد ایسے پودے ہوتے تھے جو صرف خوبصورتی اور اچھی رنگت کے حامل ہوتے تھے. چونکہ جشن میں خواتین کی بھی کثیر تعداد شرکت کرتی تھی، اس لیے ان کے لباسوں سے اٹھنے والی تیز خوشبو بھی پھولوں کی قدرتی خوشبو میں شامل ہو جایا کرتی تھی اور اس سے ماحول واقعی معطر ہو جاتا تھا. پھر یہاں بڑے بڑے پیڈسٹل فینز چاروں طرف ایسے انداز میں رکھ کر چلائے جاتے تھے کہ تیز ہوا کسی کو ڈسٹرب نہ کر سکے، اور اس کے باوجود پورے لان میں خوشگوار اور خوشبودار ہوا مسلسل محسوس ہوتی رہتی تھی. ہر سال اس جشن کی دعوت جولیا کی طرف سے ہوتی تھی اور جولیا ہی اس کے کارڈ حاصل کیا کرتی تھی، اور یہاں ہونے والے تمام اخراجات بھی جولیا ہی ادا کرتی تھی. پاکیشیا سیکرٹ سروس کے سب افراد ایک بڑی میز سے گرد بیٹھے ہوئے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے. البتہ اس محفل میں عمران موجود نہیں تھا. جولیا نے عمران کے فلیٹ پر فون کیا تھا، لیکن سلیمان نے اسے بتایا تھا کہ عمران اپنی اما بی کے ساتھ اپنی بہن سریا کے گھر گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی 2 روز بعد ہوگی. اس لیے عمران کے بغیر پوری سیکرٹ سروس یہاں موجود تھی، کیونکہ عمران کی عدم موجودگی کی وجہ سے جشن میں شرکت تو نہ چھوڑی جا سکتی تھی. اس لیے وہ سب نے نہ صرف یہاں موجود تھے بلکہ ماحول اور موسم سے پوری طرح لطف اندوز بھی ہو رہے تھے. عمران صاحب ہوتے تو واقعی لطف آ جاتا، پچھلے سال ان کی وجہ سے بڑا لطف آیا تھا، صفدر نے کہا. ہاں، لیکن بعض اوقات وہ اچھی بھلی تفریح کو بھی برباد کر دیتا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا. اس کے لاشعور میں جو محرومی ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، اچانک تنویر نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے. محرومی؟ کیا مطلب، کیسی محرومی؟ سب نے حیران ہو کر بیک وقت پوچھا. اس کی اپنے والد سے نہیں بنتی، انہوں نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے، مانگے کے فلیٹ میں پڑا ہوا ہے. ابھی اس کی اما بھی زندہ ہے، اس لیے کبھی کبھار کوٹھی چلا جاتا ہے. خدا نخواستہ جب اس کی اما بھی کا انتقال ہو گیا تو یہ مستقل طور پر محرومی کا شکار ہو جائے گا، تنویر نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا. تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو تنویر، ایسی کوئی بات نہیں. عمران کے ڈیڈی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عمران کی کیا حیثیت ہے. جس روز سر سلطان نے انہیں بتا دیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور تمام سپر پاورز کی نظروں میں عمران کی کیا حیثیت ہے، تو اسی روز وہ اسے گلے لگا لیں گے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا. تنویر نے جو کچھ کہا ہے وہ تو درست نہیں ہے، لیکن بہرحال عمران محرومی کا شکار ضرور ہے، جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا. تو سب اس طرح چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں توقع ہی نہ ہو کہ جولیا ایسی بات بھی کر سکتی ہے. کیسی محرومی جولیا؟ सालेहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। उम्र उनकी काफी हो गई है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई और ये उसके लिए वाकई बड़ी महरूमी है, जूलिया ने संजीदा लहजे में कहा। तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। जहां वो शादी करना चाहता है वहां उसकी शादी जिंदगी भर नहीं हो सकती, इसलिए ये महरूमी तो जिंदगी भर नहीं खत्म हो सकती, तनवीर ने यकलक सख्त लहजे में कहा। कहाँ करना चाहता है वो शादी, किसी के बोलने से पहले जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारे साथ, तनवीर ने बगैर सोचे समझे अपनी आदत के मुताबिक खुलकर बात करते हुए कहा। ये तुम्हें एक बहुत बड़ी गलत फहमी है तनवीर, मैं भी बड़े तवील अरसे तक यही समझती रही जो तुम समझ रहे हो, लेकिन अब मैंने इस मसले पर जब गैर जज्बाती अंदाज में सोचा है तो मुझे यकीन हो गया है कि ये बात नहीं है, जूलिया ने बजाय गुस्सा करने के बड़े संजीदा लहजे में कहा। ये शायद तुम गुस्से की वजह से कह रही हो, वरना बात वही है जो मैंने कही है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो, मेरे इस ख्याल के पीछे बाकायदा फिलॉसफी है, मुझे भी मालूम है और तुम सब भी जानते हो कि इमरान अपनी अम्मा भी की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, और इमरान की अम्मा भी गैर मुल्की लड़कियों के बारे में जो ख्यालात रखती हैं वो सबको मालूम है, चाहे वो लड़की मुसलमान ही क्यों ना हो। इमरान की अम्मा भी किसी सूरत किसी गैर मुल्की लड़की को अपनी बहू बनाने पर रजामंद नहीं हो सकती, और ये बात इमरान को शुरू से ही मालूम है, इसलिए इमरान अब तक जो कुछ करता रहा है सिर्फ अपनी महरूमी को इस अंदाज में दूर करने के लिए करता रहा, वरना उसे भी मालूम है कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, जूलिया ने संजीदा लहजे में बाकायदा दलाइल देते हुए कहा। मिस जूलिया, मौसम बेहद शानदार है, क्या हम किसी और ट्रैक पर बात नहीं कर सकते, सफदर ने मौजू बदलने के लिए कहा। ठीक है, आई एम सॉरी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब मिलकर इमरान की शादी किसी ऐसे खानदान में करा दें जहां उसकी अम्मा भी राजी हो जाएं? इससे मेरा ख्याल है कि इमरान की महरूमी दूर हो जाएगी और उसकी कारकर्दगी में मजीद निखार आ जाएगा, तनवीर ने कहा। तो सब ने बेख्तियार होंठ भींच लिए, क्योंकि सब जानते थे कि तनवीर क्यों ये बात कह रहा है। वो इमरान का कांटा हटाकर खुद अपने लिए रास्ता साफ करना चाहता था। हाँ, ऐसा हो सकता है, वैसे भी इमरान की शादी में चीफ रुकावट नहीं बन सकता क्योंकि इमरान सीक्रेट सर्विस का मेंबर ही नहीं है, जूलिया ने कहा। लेकिन इमरान की मौजूदा जाहिरी पोजीशन देखकर ऐसा कोई खानदान ये रिश्ता मंजूर नहीं करेगा, जिस टाइप के खानदान में इमरान की अम्मा भी उसकी शादी करना चाहती होंगी, इस बार नोमानी ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सर अब्दुलरहमान की वजह से रिश्ता बहरहाल मंजूर हो जाएगा, क्योंकि इमरान अपने वालदेन का इकलौता लड़का है और सर अब्दुलरहमान के बाद उनकी तमाम जायदाद और जागीर का इकलौता मालिक भी इमरान ही होगा, चौहान ने कहा। अब सिवाय सफदर, कैप्टन शकील और सालिहा के बाकी सब बड़े जोर और शोर से इस बारे में बातें कर रहे थे। इसमें जूलिया भी खिलाफ तवक्का भरपूर अंदाज में शामिल थी, लेकिन सफदर और कैप्टन शकील दोनों देख रहे थे कि सब बातें करते वक्त जूलिया के चेहरे पर पथरीली संजीदगी उभर आई थी। एक खानदान ऐसा है कि इमरान की अम्मा भी वहां इमरान की शादी करने पर तैयार हो जाएंगी, अचानक सिद्दीकी ने कहा। तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। कौन सा खानदान, जूलिया ने चौंक कर पूछा। शेरगढ़ बड़ा मशहूर इलाका है, काफिरिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। नवाब फखरुद्दीन वहाँ के बहुत बड़े जागीरदार हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आला तालीम याफ्ता भी हैं। वो ज्यादा नहीं तो किसी सूरत भी सर अब्दुलरहमान से कम भी नहीं है। उनकी इकलौती बेटी है जिसका नाम रक्षिंदा है, लेकिन प्यार से उसे रक्षी कहा जाता है। रक्षिंदा ने ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की है और वो हाल ही में तालीम से फारिग हुई है। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो यहाँ पाकेशिया में मुस्तकिल वापस आ गई है। इंतहाई सुलझी हुई और अच्छे ख्यालात की मालिक है, सिद्दीकी ने किसी मैरिज ब्यूरो के एजेंट की तरह बड़े माहिराना अंदाज में सब कुछ बताते हुए कहा। लेकिन इमरान की अम्मा भी को तो ऐसी लड़की पसंद नहीं आएगी, उन्हें तो कोई ऐसी घरेलू लड़की पसंद आएगी जो नकाब करती हो, सलीकामंद और सुघड़ हो, इस बार सालेहा ने कहा। ऐसी भी कोई बात नहीं है सालेहा बहन, सर अब्दुल रहमान बहुत बड़े ओहदेदार हैं और आला तालीम याफ्ता हैं, इसलिए वो तालीम की अहमियत को समझते हैं। और इमरान की अम्मा भी दरअसल ऐसी बहू चाहती हैं जो इस्लामी माहौल में परवान चढ़ी हो, छिछोरी या फ्लर्ट टाइप ना हो, सिद्दीक ने जवाब देते हुए कहा। तुम इस खानदान के बारे में इतनी तफसील कैसे जानते हो सिद्दीकी, सफदर ने मदाखलत करते हुए कहा। एक हफ्ता कबल होटल शेरिटन के एक फंक्शन में नवाब फखरुद्दीन से इत्तफाकन मुलाकात हो गई, उनकी साहबजादी भी साथ थी। वहां बातों में मालूम हुआ कि नवाब साहब मेरी मरहूमा वालदा के दूर के रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे अपनी हवेली आने की दावत दी, जो मैंने इस शर्त पर कबूल कर ली कि मैं अकेला नहीं आऊंगा बल्कि हम चार पांच दोस्त इकट्ठे आएंगे, जिसे उन्होंने फौरन कबूल कर लिया, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। हो सकता है कि उनकी नजरें तुम पर हों, जूलिया ने सब कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, सिद्दीकी ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार उछल पड़े। तुमने झूठ क्यों बोला, जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मजबूरी थी मिस जूलिया, अब मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि सीक्रेट सर्विस में शादी पर पाबंदी है, और उनका अंदाज बता रहा था कि शायद वो खुद ही खुलकर बात कर दें, इसलिए पेशबंदी जरूरी थी, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस मामले में पेशरफ्त कैसे होगी, जूलिया ने कहा। पहले हम जाकर नवाब साहब और उनकी साहबजादी के सामने इमरान साहब की तारीफें करेंगे, फिर सर सुल्तान के जरिए सर अब्दुल रहमान को उनसे मुलाकात करने पर तैयार करेंगे, फिर दोनों फैमिलियां एक दूसरे के यहाँ आए जाएंगी तो जाहिर है कि इमरान की अम्मा भी और इमरान की बहन सुरैया भी रक्षंदा को देख लेंगी, फिर ही ये मामला फाइनल हो जाएगा, सिद्दीकी ने बड़े माहिराना अंदाज में बाकायदा प्लानिंग करते हुए कहा। मुझे तो तुम्हारी बातों से सुनकर यूं लगता है कि जैसे तुम काम ही शादियां कराने का करते हो, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। सब बेख्तियार हंस पड़े। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम फाइनल रहा, जूलिया ने पुरजोश लहजे में कहा तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा तो सब बेख्तियार उछल पड़े। क्या मतलब, जूलिया समेत तकरीबन सबने ही हैरत भरे लहजे में कहा। आप सब इस तरह प्रोग्राम बना रहे हैं जैसे इमरान को कानो कान खबर ना होगी, और आप उसे कान से पकड़कर रक्षिंदा के साथ शादी करने पर तैयार करा लेंगे, जबकि आप सब जानते हैं कि इमरान साहब आपके इस प्लान का क्या हशर कर सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान की अम्मा भी आमादा हो जाएं तो इमरान साहब की जरूरत नहीं कि वो अपनी अम्मा बी का हुक्म टाल सकें, सिद्दीकी ने कहा। इमरान साहब अपनी अम्मा बी की नफसियात को हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने नवाब साहब और उनकी साहबजादी के बारे में अपनी अम्मा बी के कान में ऐसी फूंक मारनी है कि अम्मा बी लाजमन भिदक जाएंगी, कैप्टन शकील ने कहा। इसका एक और हल है, सफदर ने कहा। वो क्या, सबने चौंक कर पूछा। अगर इमरान की बहन सुरैया और उसके शोहर को इस पर आमादा कर लिया जाए तो सुरैया अम्मा बी को कवर कर सकती है, इस अंदाज में कि इमरान कुछ भी ना कर सके, इस बार नोमानी ने कहा। ये सब बातें बाद में होंगी, पहले हम जाकर इस फैमिली से तो मिल लें, जूलिया ने कहा, और फिर इन सब ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया और उसके बाद दूसरी बातें शुरू हो गई। अलबत्ता जूलिया खामोश बैठी हुई थी। शोफगंज की कार खासी तेज रफ्तारी से नारा की इंतहाई मारूफ सड़क पर दूसरी बेशुमार कारों के दरमियान दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, उसने शोफ रंग का स्कर्ट पहना हुआ था, उसके बाल कत्थई रंग के थे जो उसके शानों पर लहरा रहे थे। साइड सीट पर एक और लड़की बैठी हुई थी जिसने अपने कानों में नीले रंग के बेहद खूबसूरत टॉप्स पहन रखे थे। उसके सर के बाल बॉय कट अंदाज में तराशे हुए थे और उसने जीन्स की पैंट और सियाह लेदर की इंतहाई महंगी लेडीज जैकेट पहन रखी थी। उसकी आंखों पर सुर्ख रंग की शीशों वाली गॉगल थी। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है मारिया कि चीफ ने हम दोनों को क्यों बुलाया है? ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई लड़की ने साइड सीट पर मौजूद लड़की से मुखातिब होकर पूछा। अंदाजा क्या, मुझे तो हतमी तौर पर मालूम है, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, तुम्हें कैसे मालूम है? तुम मेरे साथ अभी जजीरे हवाई से आ रही हो। चीफ की कॉल भी वहां मैंने ही सुनी थी और फिर तुम्हें तलाश करके मेरे पास पहुंचाया गया, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें हतमी तौर पर मालूम है। इसका क्या मतलब हुआ? ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई लड़की ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो मारिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बाज औकात बच्चों जैसी बातें करने लग जाती हो एल्सा, मुझे तुमसे ज्यादा कैसे मालूम हो सकता है? अलबत्ता ये बात हतमी तौर पर कही जा सकती है कि कोई मिशन चीफ ने हमसे मुकम्मल कराना होगा, मारिया ने हंसते हुए कहा। तो एल्सा ने भी हंसना शुरू कर दिया। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल अंदाजा तो लगाया जा सकता है, एल्सा ने भी हंसते हुए कहा। अंदाजों का क्या है, जितना दिल चाहे लगा लो। आजकल पूरी दुनिया के मीडिया का काम अंदाजों पर चल रहा है। हर चैनल पर दिन में कई मर्तबा सियासी और सामाजिक तज्जिये होते हैं जिनमें अंदाजे ही लगाए जाते हैं। अलबत्ता एक बात कंफर्म है कि इस बार हमारा मिशन एक्रीनिया से बाहर होगा, मारिया ने कहा। तो एल्सा एक बार फिर चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। तुम कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो जिस पर मुझे हैरत होती है, एल्सा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों सुपर एजेंट्स हैं। एक्रीमिया में कोई आम मिशन हो तो हम में से एक को कॉल किया जाता है, लेकिन इस बार बयक वक्त हम दोनों को कॉल किया गया है, इसलिए ला महाला हम दोनों इकट्ठी किसी मिशन पर काम करेंगी, और यकीनन ये कोई बड़ा मिशन होगा और मुल्क से बाहर होगा, मारिया ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। गुड शो मारिया, तुम्हारा ये तजियाती जहन वाकई बेमिसाल है, एल्सा ने बेख्तियार तहसीन आमेज लहजे में कहा। तो मारिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुम तारीफ कर रही हो जबकि हेनरी मेरे इन तज्जियों से बेहद चिढ़ता है और मुझे भी उसे चिढ़ाने में बेहद लुत्फ आता है, मारिया ने हंसते हुए कहा। हेनरी मर्द है और मर्द औरतों की अकलमंदी से हमेशा से चिढ़ते हैं। वो हमेशा मर्दों को ही अकलमंद समझते हैं, बल्कि मैंने सुना है कि मशरिक में औरत को नाकिसुल अकल ना सिर्फ कहा जाता है बल्कि समझा भी जाता है। वहां तो इस हद तक कहा जाता है कि जो मर्द औरत की बात मान लेगा वो नुकसान उठाएगा, एल्सा ने कहा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड थॉमसन तो तुमसे बेहद खुश होगा क्योंकि हमेशा उसकी अकलमंदी की तारीफें करती रहती हो, मारिया ने कहा। तो एल्सा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मजबूरी है मारिया, अब क्या किया जाए, दोस्ती तो बहरहाल कायम रखनी पड़ती है, एल्सा ने हंसते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने कार एक साइड रोड की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद साइड रोड पर काफी दूर आगे जाने के बाद उसने कार को एक बार फिर मोड़ा और इस बार एक गत्ता फैक्ट्री के एक जहाजी साइज के गेट के सामने जाकर रुक गई, जहां दो मुसल्ला बावर्दी दरबान मौजूद थे। दो गोल्डन कार्ड चाहिए, एल्सा ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। स्टोरी खत्म हो गए हैं, दरबान ने बड़े खुश लहजे में कहा। सिल्वर कार्ड ला दो, एल्सा ने कहा। सॉरी मिस, अब तो कोई कार्ड बाकी नहीं रहा, दरबान ने इसी तरह खुश लहजे में जवाब देते हुए कहा। चलो अपने दस्तखत करके ही दे दो, हम उसे ही गोल्डन कार्ड समझ लेंगे, एल्सा ने हंसते हुए कहा। तो दरबार ने खामोशी से जेब में हाथ डाला और दो आम से गत्ते के कार्ड निकालकर एल्सा के हाथ पर रख दिए। इन दोनों कार्ड पर एक नौजवान लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। शुक्रिया, एल्सा ने कहा और कार को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। एक बार फिर इसी साइड रोड पर कार आगे बढ़ी चली जा रही थी और फिर तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद कार एक छोटी सी इमारत के गेट पर जाकर रुक गई। इमारत पर किसी ऑफिस का पुराना सा बोर्ड लगा था। एल्सा ने कार रोकते ही दरवाजा खोला और नीचे उतर कर उसने फाटक के एक सुराख में यके बाद दिखरे दोनों कार डाल दिए और वापस आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद फाटक बगैर किसी आवाज के मैकेनिकी अंदाज में खुलता चला गया। एल्सा ने कार अंदर मौजूद गैराज में ले जाकर रोक दी। फाटक उनके अकब में मौजूद खुद ब खुद बंद हो गया। इस बार वो दोनों कार से उतरी और तेज तेज कदम उठाती हुई सामने बरामदे में चढ़कर एक राहदारी से गुजरकर सबसे आखिरी कमरे में दाखिल हो गई। चंद लम्हों बाद इस कमरे का फर्श किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। फिर जैसे ही ये लिफ्ट रुकी, एल्सा ने सामने मौजूद दीवार के दरमियान में सिया रंग के चौकोर टुकड़े पर अपना हाथ रख दिया। चंद लम्हों बाद हाथ उठाकर वो पीछे हटी तो मारिया ने आगे बढ़कर अपना हाथ इस जगह पर रख दिया। चंद लम्हों बाद उसने भी हाथ हटा लिया। इसके साथ ही सरर की आवाज के साथ ही दीवार एक साइड में गायब हो गई। अब सामने एक और राहदारी थी जिसके आखिर में एक दरवाजा था जिसके ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। वो दोनों तेज तेज कदम उठाती हुई इस दरवाजे के करीब पहुंची तो बल्ब बुझ गया और इसके साथ ही दरवाजा बे आवाज अंदाज में खुलता चला गया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गईं। ये खासा बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। महागनी की बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग चेयर पर एक दुबला पतला लेकिन बांस की तरह लंबे कद का आदमी सूट पहने बैठा था। उसका चेहरा इस कदर सूखा था जैसे अमचूर होता है, अलबत्ता उसकी आंखों में तेज चमक थी। ये एक रीमिया की इंतहाई खुफिया लेकिन टॉप सीक्रेट एजेंसी रेड वुल्फ का सरबराह कर्नल रिचर्ड था। रेड वुल्फ एक्रीमिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी थी जो बराह रास्त सदर एक्रीमिया के तहत थी और ऐसे मामलात में काम करती थी जिन्हें आम एजेंसियों के जिम्मे ना लगाया जा सकता था। हत्ता के एक्रीमिया की इंतहाई ताकतवर ब्लैक और रेड एजेंसी से भी ज्यादा इसे अहमियत दी जाती थी। इसका दायरा कार ज्यादातर तो सुपर पावर्स के सुपर टॉप एजेंटों को डील करना और फिर उनका इस अंदाज में खात्मा करना होता था कि किसी को इसके बारे में मालूम ही ना हो सके। इसलिए इसके बारे में तमाम सुपर पावर्स में मौजूद थे लेकिन खसूसी मिशंस में इन राब्तों से काम लेने और मिशन मुकम्मल करने के लिए सुपर एजेंट्स को भेजा जाता था। रेड वुल्फ में दो सर्किल थे जिनमें एक सुपर एजेंट कहलाते थे जबकि दूसरे रेड एजेंट्स। सुपर एजेंट्स सिर्फ इन्हें बनाया जाता था जिनकी कारकर्दगी पर कोई शक व शुबा ना किया जा सकता हो और मारिया और एल्सा दोनों ही रेड वुल्फ की सुपर एजेंट्स थीं। इन दोनों का रिकॉर्ड बेहतरीन था। इन्हें कई सालों तक इंतहाई सख्त तरीन और कठिन तरबियत दिलवाई गई थी और अब भी हर माह 2 रोज के लिए तरबियती कैंप ज्वाइन करती थी जहां से इनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट चीफ तक पहुंच जाती थी। और चीफ कर्नल रिचर्ड इंतहाई शफाक और संगदिल आदमी था। जिस सुपर एजेंट की कारकर्दगी उसे पसंद नहीं आती थी वो सुपर एजेंट दूसरे रोज मुर्दा पाया जाता था। इसलिए सुपर एजेंट हर वक्त अपने आप को चाको चौबंद रखते थे। अलबत्ता सुपर एजेंट्स को ना ही कभी दौलत की कमी होती थी और ना ही किसी चीज की कमी। इनकी जिंदगी वाकई शाहाना अंदाज में गुजरती थी। एल्सा और मारिया दोनों ने एक माह पहले अपना अपना मिशन इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल किया था। इसलिए चीफ ने उन्हें एक हफ्ते की छुट्टी दे दी थी और ये दोनों छुट्टियां गुजारने जजीरे हवाई पहुंच गईं और अब भी वो चीफ की कॉल पर इकट्ठी ही वापस आई थीं। ये इमारत रेड वुल्फ का हेडक्वार्टर था लेकिन यहाँ किसी गैर मुल्की का दाखला तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया था। मारिया और एल्सा दोनों ने ही ऑफिस में दाखिल होते ही बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कर्नल रिचर्ड को सलाम किया। बैठो, कर्नल रिचर्ड ने कहा लेकिन इसका लहजा बेहद खुश था। वो दोनों खामोशी से मेज की दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठ गईं। तुम दोनों आज तक पाकेशिया नहीं गईं, लेकिन तुम्हें पाकेशिया के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा, कर्नल रिचर्ड ने इस तरह खुश लहजे में कहा। और पाकेशिया का नाम सुनकर मारिया और एल्सा ना सिर्फ चौंक पड़ी, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को मानी खैर नजरों से देखना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि पाकेशिया बर्रे आजम एशिया का एक तरक्की पजीर मुल्क है, और बस, मारिया ने कहा, और फिर इसी किस्म का फकरा एल्सा ने भी दोहरा दिया। गुड, इसी बुनियाद पर मैंने रेड वुल्फ में से तुम दोनों का इंतखाब किया है, और तुम दोनों को इकट्ठे इसलिए कॉल किया है कि ये तुम्हारे लिए यकसर अजनबी मुल्क और अजनबी तहजीब होगी, इसलिए तुम दोनों का साथ एक दूसरे के लिए हौसले का बाइस होगा, कर्नल रिचर्ड ने कहा। उसका लहजा वैसे ही खुश था। थैंक यू सर, इन दोनों ने बारी बारी जवाब दिया। आइंदा माह के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जंगी हथियारों की एक बैनुल अक्वामी नुमाइश मुनक्किद हो रही है। इस नुमाइश में हर किस्म के जदीद हथियारों से लेकर एटमी हथियारों तक की नुमाइश की जाएगी। मशरिक वुस्ता में तमाम इस्लामी ममालिक के सरकारी और फौजी वफूद इस नुमाइश को देखने आएंगे, ताकि पाकिस्तान से जदीद हथियारों की खरीदारी कर सकें, कर्नल रिचर्ड ने कहा। क्या पाकिस्तान इस कदर तरक्की कर चुका है कि जदीद हथियार तैयार कर सके, मारिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान मशरक का एक पुरेसरार मुल्क साबित हो रहा है, इसे कायम हुए अभी थोड़ा ही अर्सा गुजरा है। इस मुल्क में आज तक हुकूमती इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सका। मौशी तौर पर भी पाकिस्तान एक पसमानदा और गरीब मुल्क है। वहां गुर्बत की लकीर से भी नीचे मुल्क की दो तिहाई आबादी सिसक सिसक कर जिंदगी गुजार रही है। मौशी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही, बल्कि वो तनजुली का शिकार है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने एटमी धमाके किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी लेबोरेटरियां कायम की गई हैं जहां इंतहाई जदीद तरीन हथियार तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान के साइंसदान काबिलियत, जहानत और मेहनत के बिना पर यूरोप और एक्रीमिया के साइंसदानों से भी आगे हैं। एक्रीमिया और यूरोप की अक्सर लेबोरेटरियों में पाकिस्तानी साइंसदान काम कर रहे हैं। वहां के आवाम का रहन सहन देख कर यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान की पसमानदगी सिर्फ प्रोपेगेंडा है। बेशुमार जंगी इजादात के साथ साथ पाकिस्तान मिजाइल साजी में भी आगे जा रहा है, और आज मशरक़ वुस्ता और तमाम इस्लामी ममालिक की दिफाई और फौजी जरूरियात पाकिस्तान ही पूरी कर रहा है, जबकि इससे पहले ये तमाम ममालिक इस मामले में यूरोप और क्रीमिया के मोहताज थे। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस दुनिया की सबसे फाल और सबसे तेज और सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस करार दी जाती है। पूरी दुनिया की सुपर पावर्स और इनकी टॉप एजेंसियां पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाम सुनकर ही कांप जाती हैं। हत्ता कि पूरी दुनिया को कोई मुश्तर का मामला दरपेश होता है तो एक क्रीमिया भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पर ही इन्हिसार करता है। इसराइल को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने जिस कदर नुकसान पहुंचाया है उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, और इस सर्विस का असल रूह रवा एक नौजवान अली इमरान है। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की हुई है, और न सिर्फ डिग्री हासिल की हुई है बल्कि जदीद तरीन साइंसी मामलात में वो अब भी अच्छे अच्छे साइंसदानों से आगे है। इस इमरान की शख्सियत इंतहाई पुरइसरार है। वो बज़ाहिर मस्खरा अहमक और बातूनी सा नौजवान है, इसे देखकर और जिससे मिलकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये नौजवान इस कदर खौफनाक शख्सियत का हामिल भी हो सकता है। मार्शल आर्ट, निशानाबाजी और ऐसे ही दूसरे तमाम फनून में भी वो यकता है। वो बेपनाह जहानत का मालिक है और पूरी दुनिया में रहने वाले हर तबके के अफराद से उसके मुस्तकिल राबते हैं। उसका कोड नाम प्रिंस ऑफ डंप है। एक आम और सादा से फ्लैट में वो अपने बावर्ची के साथ रहता है। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का बाकायदा मेंबर भी नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का पुरइसरार चीफ, जो इंतहाई खुफिया शख्सियत है और जिसका कोड नाम X2 है, किसी भी मिशन के लिए उसे हायर कर लेता है। और फिर वो टीम के साथ सरबराह के तौर पर मिशन पर काम करता है। आमतौर पर उसकी टीम में दो औरतें और चार के करीब मर्द होते हैं। मेकअप के फन में भी ये लोग इंतहाई माहिर हैं, कर्नल रिचर्ड ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इस तरह वो रुक गया जैसे बोलते बोलते थक गया हो, जबकि मारिया और एल्सा दोनों के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात थे। इन्हें बार बार वहम हो रहा था कि इनके सामने कर्नल रिचर्ड के बजाय कोई और बैठा हुआ है, क्योंकि कर्नल रिचर्ड तो बड़े नपे तुले लफ्ज अल्फाज बोलने का आदी था और वो तो अच्छे से अच्छे एजेंट को घास नहीं डालता था, जबकि वो इस पाकेशियाई की इस तरह तारीफे कर रहा था जैसे वो इससे सख्त मरूब हो। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी बातों पर हैरत हो रही है, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुमने फाकेशिया में मिशन मुकम्मल करना है। जहां तक इमरान की बात है तो मैं क्रीमिया की बेशुमार एजेंसियों में बतौर एजेंट काम कर चुका हूँ और मेरे कारनामों की एक तवील फहरिस्त मौजूद है। हत्ता कि मुझे क्रीमिया और पूरी दुनिया में टॉप एजेंट समझा जाता है, लेकिन ये हकीकत है कि मेरा सामना जब भी इमरान से हुआ है हर बार मैं यही समझता रहा कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, लेकिन जब रिजल्ट निकलता तो पता चलता कि इसने केस इमरान ने दरअसल मुझे इस्तेमाल किया और रिजल्ट उसी ही के हक में निकला, कर्नल रिचर्ड ने कहा। चीफ, क्या उसे हलाक करने की कभी कोशिश नहीं की गई? मारिया ने कहा तो कर्नल रिचर्ड के चेहरे पर पहली बार तंजिया मुस्कुराहट नजर आई। पूरी दुनिया के एजेंटों की ये दिली ख्वाहिश है कि इमरान हलाक हो जाए। तमाम सुपर पावर्स, उसका हमसाया मुल्क काफिरिस्तान, तमाम यूरोपीय ममालिक और खुसूसन इसराइल और पूरी दुनिया में फैली हुई यहूदी एजेंसियां, सबकी यही ख्वाहिश है कि इस इमरान को किसी तरह हलाक कर दिया जाए। और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए एक दो नहीं, सैकड़ों बल्कि हजारों कोशिशें की गईं, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर रहा। वो जख्मी जरूर हो जाता है लेकिन फिर तंदुरुस्त हो जाता है। यकीनन खुशकिस्मती उसके साथ साथ चलती है। वो वाकई ऐसा उफरियत है जो लाखों आंखें रखता है, और ना सिर्फ रखता है बल्कि उन्हें बयक वक्त इस्तेमाल करने पर भी कादिर है, कर्नल रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। क्या वहां हमारा मुकाबला उसी इमरान से होगा? इस बार एल्सा ने कहा। ये सब कुछ मैंने इसलिए तुम्हें बताया है कि तुम दोनों ने हर कीमत पर और हर सूरत में उससे बचकर मिशन मुकम्मल करना है। अगर उसे मामूली सी भनक भी पड़ गई तो कामयाब तो तुम एक तरफ, जिंदा भी वापस नहीं आ सकोगी, कर्नल रिचर्ड ने कहा तो इन दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात थे। ये एक लिहाज से इन दोनों सुपर एजेंटों की सरासर तोहीन थी। ठीक है सर, मिशन क्या है? मारिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुम दोनों का इंतखाब इसलिए किया गया है कि तुम दोनों के बारे में इमरान कुछ नहीं जानता, क्योंकि तुम दोनों पहली बार पाकिस्तान जा रही हो। बहरहाल मिशन बेहद आसान है। इस जंगी हथियारों की नुमाइश में एक स्टॉल फौजी नौयत की कैमरों का भी लगाया जा रहा है। इस स्टॉल का नंबर 11 है और इस स्टॉल पर ऐसे जदीद तरीन कैमरों की नुमाइश की जा रही है जो दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस स्टॉल पर एक छोटा सा लेकिन इंतहाई जदीद साख्त का कैमरा भी रखा जा रहा है। इसे पाक एशिया के साइंसदानों ने ईजाद किया है। इसका साइंसी नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उस प्याम में उसे पिन कैमरा कहा जाता है। इसमें ऐसी रेज इस्तेमाल की गई है जो तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया में हर किस्म की रुकावटों को क्रॉस कर जाती हैं। इस तरह 10 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन की तमाम तनसीबात को न सिर्फ चेक किया जा सकता है बल्कि उनकी तस्वीर भी बनाई जा सकती हैं। उसके साथ साथ इसके जरिए बाहर खड़े होकर किसी भी खुफिया लेबोरेटरी के अंदर अंदरूनी तस्वीर कशी की जा सकती है। वर्जी के इस कैमरे से बेशुमार काम लिए जा सकते हैं। ये एक इनकलाबी ईजाद है। इक्रीमिया ने यह कैमरा हासिल करने की कोशिश की लेकिन कोई भी उसे हासिल नहीं कर सका। अलबत्ता स्टॉल नंबर 11 पर पहली बार इसकी नुमाइश की जा रही है, लेकिन ये बराए फरोख्त नहीं होगा, सिर्फ दुनिया में पाकिस्तानी साइंसदानों की जहानत और कामयाबी के इजहार के लिए उसकी नुमाइश की जा रही है। تاکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اس سے متاثر ہو کر زیادہ سے زیادہ اسلحہ خریدیں۔ ان دونوں نے یہ کیمرہ وہاں سے حاصل کر کے ایکریمیا پہنچانا ہے، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ چیف، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نمائش میں اصل کیمرے کے بجائے اس کی ڈمی رکھے، ماریا نے کہا۔ نہیں، خصوصی ٹیموں کو اس کیمرے کی کارکردگی باقاعدہ شو کی جائے گی، اس لیے کیمرہ اصل ہی ہوگا، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ لیکن ہم کس حیثیت سے وہاں جائیں گے؟ ایلسا نے پوچھا۔ ہاں، یہ انتہائی اہم بات ہے، اس لیے اس پوائنٹ پر بے حد غور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تم دونوں دفاعی مبصر کے طور پر وہاں جاؤ گی۔ تم دونوں دفاعی آلات اور ان کی ریسرچ کے سلسلے میں طویل عرصے سے کام کر رہے ہو، اور تمہارے مضامین اخبارات اور رسائل میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں، اور جنہیں بے حد وقت دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دفاعی ماہرین کا ایک پینل تمہارے ساتھ تمہیں باقاعدہ بریفنگ دیتا رہے گا، اور تمہارے ساتھ ایسی کٹنگ پر مشتمل فائلز بھی ہوں گی جن میں تمہارے مضامین موجود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکریمیا کے دفاعی آلات پر چھپنے والا ایک انتہائی وقعی رسالہ ڈیفینس ویو کے خصوصی کارڈ بھی تمہارے پاس ہوں گے، اور تم ایسے کاغذات پر وہاں جاؤ گی جو تصدیق کرنے اور کرانے کے باوجود اصل ہوں گے، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ یہ کیمرہ کتنا بڑا ہے اور کس سائز کا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ گول ہے، وزنی ہے یا ہلکا ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ چھوٹا سا کیمرہ ہے، لیکن یہ کیمرہ سیلڈ ہوتا ہے، اگر اسے کھول دیا جائے تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے ہینڈ بیگ میں آسانی سے سما جائے گا، کرنل ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے وہاں سے کیسے اکریمیا پہنچانا ہے؟ ایلسا نے پوچھا۔ اس سلسلے میں خصوصی طور پر غور کیا گیا ہے، یہ کیمرہ چوری ہوتے ہی پورے پاکیشیا میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ پاکیشیائی اس کیمرے کی حفاظت اپنی جانوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس اسے واپس حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گی۔ دارالحکومت سے باہر جانے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے، تمام کوریئر کمپنیوں سے باہر بھیجی جانے والی چیزیں چیک کی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمام ملکوں کے سفارت خانوں کی بھی چیکنگ کی جائے اور سفارتی بیگز کو بھی چیک کیا جائے۔ اس لیے انتہائی غور کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تم دونوں یا تم میں سے ایک یہ کیمرہ دارالحکومت کے شمال کی طرف تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک واقع سرحدی علاقہ شیر گڑھ میں واقع ایک ہوٹل جسے سٹار ہوٹل کہا جاتا ہے کے مالک اور جنرل مینیجر مارٹن کو پہنچا دینا۔ مارٹن یہ کیمرہ فوری طور پر کافرستان میں ہمارے آدمی تک پہنچا دے گا، جہاں سے یہ اکریمیا پہنچ جائے گا۔ اس سرحدی علاقے میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہاں کی چیکنگ کا خیال بھی کسی کو نہیں آئے گا، کرنل ریچرڈ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ ہم نے کب تک وہاں رہنا ہے؟ ماریا نے کہا۔ جب تک یہ کیمرہ اکریمیا نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک تم دونوں وہاں رہو گی۔ اگر تم پر کوئی شک بھی کرے گا تو تم پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب تمہیں میری طرف سے اسپیشل کوشن مل جائے تو پھر تم اطمینان سے واپس آ جانا، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ لیکن اگر ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیکرٹ سروس بھی حرکت میں آ گئی تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ماریا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم نے ہر صورت میں لا تعلق رہنا ہے، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر تشدد کریں، ایلسا نے کہا۔ ہاں، ایسی صورت میں تمہیں مکمل اجازت ہے کہ تم جس طرح چاہو کرو۔ بہرحال کیمرہ ہر صورت میں اکریمیا پہنچنا چاہیے، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ آپ سے رابطہ رہے گا یا نہیں؟ ایلسا نے پوچھا۔ نہیں، کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، ورنہ تم ٹریس بھی ہو سکتی ہو، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ تو ماریا اور ایلسا نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ مزید کام کب ہوں گے؟ ماریا نے پوچھا۔ کل سے شروع ہوگا، بریفنگ کے بعد تمہیں ضروری کاغذات مل جائیں گے، پھر تم پاکیشیا روانہ ہو جانا، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ تو وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کرنل ریچرڈ کو سلام کیا اور آفس کے باہر बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो अपनी आदत के मुताबिक एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। बैठो, रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। कोई खास बात जो मेरी अदम मौजूदगी में हुई हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। खास बात नहीं बल्कि खास उल्खास केस है, ब्लैक जीरो ने भी मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। सीक्रेट सर्विस आपके लिए रिश्ता तलाश करती फिर रही है, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। सीक्रेट सर्विस मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, इमरान ने हकीकी हैरत भरे लहजे में कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। आपकी अदम मौजूदगी में होटल ग्रैंड में सालाना जश्न बहारा मुनक्किद हुआ था, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, और मुझे अफसोस है कि मैं इसमें शरीक नहीं हो सका। लेकिन इस जश्न में कोई हंगामा हुआ है? इमरान ने कहा। हंगामा नहीं, कयामत बरपा हुई है इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे अंदर भी सस्पेंस पैदा करने के जरासीम नमूदार होना शुरू हो गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी मर्जी है, आप जो चाहे कह लें, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। तो फिर सीधी तरह बताओ कि क्या हुआ है? इस तरह सस्पेंस पैदा करके तुम मेरे आसाब चटकाना चाहते हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। सीक्रेट सर्विस ने जूलिया की सरबराही में इस जश्न बहारा में शिरकत की। मैंने भी उनके करीब ही एक मेज हासिल कर ली। मैं इनकी बातों से लुत्फानंदोज होना चाहता था और फिर वहां आपकी शादी के बारे में बात छिड़ गई और फिर सिद्दीकी ने एक रिश्ता तजवीज कर दिया और सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि ये रिश्ता करा दिया जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। ये क्या बात हुई, तफसील बताओ, इमरान ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। तो ब्लैक जीरो ने वहां होने वाली तमाम बातचीत की तफसील दोहरा दी। शेरगढ़ और नवाब फखरुद्दीन और उनकी बेटी रक्षिंदा, लेकिन जूलिया ने यकीनन सिद्दीकी को गोली मार दी होगी जिसने ये बात की है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, बल्कि जूलिया इस मामले में पेश पेश थी, ब्लैक जीरो ने कहा। इस मौके पर कहते हैं जिस पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार खिलखिला के हंस पड़ा। अब वो सब शेरगढ़ गए हुए हैं सिद्दीकी के साथ उसके दोस्तों की हैसियत से, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या तुमसे उन्होंने इजाजत ली थी? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, जूलिया ने सिर्फ इतना बताया है कि सिद्दीकी के मिलने वाले नवाब फखरुद्दीन ने सिद्दीकी और उसके दोस्तों की दावत की है और सिद्दीकी ने सबको शेरगढ़ चलने की दावत दी है। चूंकि कोई काम नहीं था इसलिए वो इस दावत पर जाना चाहते हैं, जिस पर मैंने इजाजत दे दी क्योंकि इनकार करने का कोई जवाब नहीं था, ब्लैक जीरो ने कहा। इसका मतलब है कि उन्होंने असल बात की तुम्हें भी हवा लगने नहीं दी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अपनी तरफ से उन्होंने यही कोशिश की है, लेकिन अब उन्हें क्या मालूम कि मैं उनके साथ वाली सीट पर बैठा सब कुछ सुनता रहा, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उससे पहले की मजीद कोई बात होती फोन की घंटी बजी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान है यहाँ, दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। ना भी हो तब भी हासिल किया जा सकता है, इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। इमरान, फौरन मेरे ऑफिस पहुंचो, पाकेशिया का इंतहाई अहम जंगी हथियार चोरी कर लिया गया है, फौरन पहुंचो, सर सुल्तान ने खुश्क लहजे में कहा और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। जंगी हथियार की चोरी? क्या मतलब हुआ सर सुल्तान का? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। सर सुल्तान को अब मुझे कॉल करने का तरीका आ गया है, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो पता चलेगा कि उनके ऑफिस से कलम चोरी हो गया है और चूंकि इस कलम से दिफाई मुआहदे तैयार होते हैं इसलिए ये कलम भी जंगी हथियारों में शामिल है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं, सर सुल्तान का लहजा बता रहा है कि कोई खास बात हुई है, ब्लैक जीरो ने भी एहतरामन उठते हुए कहा। यही तो सर सुल्तान की अदाकारी है कि मैं अब सर के बल दौड़कर वहां पहुंच जाऊंगा, वरना सर सुल्तान को पता है कि मैंने हजारों नखरे करने हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की तरफ उड़ी चली जा रही थी। गोइस ने ब्लैक जीरो को यही कहा था कि सर सुल्तान अदाकारी कर रहे हैं, लेकिन सर सुल्तान के लहजे में मौजूद गहरी तशवीश ने उसे चौंका दिया था। और फिर थोड़ी देर बाद वो सर सुल्तान के ऑफिस में दाखिल हुआ तो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वहां इंटेलिजेंस का चीफ कर्नल शाह भी मौजूद था। इसके अलावा एक और बूढ़ा आदमी भी मौजूद था जो अपने लिबास और अंदाज से कोई साइंसदान लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु या अहलियाने ऑफिस, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही बड़े ही खुशू खुशू से सलाम कहा तो कर्नल शाह के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई, जबकि बूढ़े आदमी ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बैठो इमरान, मामलात इंतहाई संजीदा हैं, सर सुल्तान ने इंतहाई खुश लहजे में कहा। संजीदगी ही तो असल दुश्मन है, पर तारी हो जाए वो बेचारा जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। बहरहाल बताएं इस संजीदगी का क्या हुदूद अरबा है, इमरान ने कुर्सी पर बैठकर मुंह बनाते हुए कहा। कर्नल शाह को तुम जानते हो, ये डॉक्टर हसन है, सर दावर के तहत काम करते हैं। और डॉक्टर हसन ये वही इमरान है जिसके बारे में सर दावर ने भी आपको बताया होगा और मैंने भी बताया था, सर सुल्तान ने कहा। लेकिन डॉक्टर हसन ने होंठ चबाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद फिर कुछ सोच कर खामोश हो गए। इमरान बेटे, पाकेशिया ने एक कैमरा इजाद किया था, ये इजाद दरअसल डॉक्टर हसन की 20 साल मेहनत का नतीजा है। इसका साइंस इनाम तो बेहद तवील है, अलबत्ता इसे आमतौर पर पिन कैमरा कहा जाता है। ये कैमरा जंगी और दिफाई मकासद के लिए तैयार किया गया है। डॉक्टर हसन तुम्हें तफसील से इस बारे में बताएंगे, सर सुल्तान ने कहा। मुझे मालूम है सर दावर और 2 साल पहले मुझे इस बारे में बता चुके हैं, अलबत्ता डॉक्टर हसन साहब से आज मुलाकात हो रही है, लेकिन हुआ क्या है, असल बात बताएं, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। वो कैमरा चोरी कर लिया गया है, सर सुल्तान ने कहा। चोरी? कहाँ से, कैसे, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तफसील से बताता हूँ जनाब, कर्नल शाह ने कहा तो इमरान उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। इस हफ्ते दारुल हुकूमत में पाकिस्तान में तैयार किए गए दिफाई हथियारों और ईजादात की बैनुल अक्वामी नुमाइश की गई जो कल खत्म हुई है। इस नुमाइश में एक स्टॉल जिसका नंबर 11 था, वहां जंग में काम आने वाले कैमरे रखे गए थे, इनमें पिन कैमरा भी था। ये बराए फरोख्त नहीं था, लेकिन मशरक के वस्ता और इस्लामी ममालिक के वफूद को इसकी कारकर्दगी अमली तौर पर दिखाई जानी थी, ताकि उन्हें महसूस कराया जा सके कि पाकेशिया का दिफा से मुतालिक सामान तैयार करने में किस हद तक पेशरफ कर चुका है। कल रात 11 बजे इसका फाइनल मुजाहरा किया गया, जो इस नुमाइश में आने वाले तमाम वफूद और जंगी माहिरीन और मुबस्सिरों को दिखाया गया। इसके बाद इस पिन कैमरे को इसके मखसूस बॉक्स में बंद करके उसे खुफिया लॉकर में रख दिया गया। दूसरे रोज जब वहां से सामान लाने के लिए आदमी गए तो उस स्टॉल के चारों मुसल्ला गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई मिली। लॉकर खुला हुआ था और बाकी सब कुछ मौजूद था, अलबत्ता वो पिन कैमरा अपने बॉक्स समेत गायब था। इस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस को इत्तला दी गई तो हमने तमाम कोरियर सर्विसेज को चेक कराना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल पर हर जगह खुसूसी चेकिंग आलात लगा दिए ताकि इसे मुल्क से बाहर ना निकाला जा सके, और इंक्वायरी शुरू कर दी गई। लेकिन अब तक मुसलसल कोशिश के बावजूद कुछ मालूम नहीं हो सका। इस पर सर सुल्तान ने मुझे अपने ऑफिस का कॉल किया, यहाँ डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, और फिर आपको बुलाया गया, कर्नल शाह ने तफसील बताते हुए कहा। इमरान बेटे, इस कैमरे को वापस मिलना चाहिए, वरना पाकिस्तान का दिफा हकीकी खतरे की जद में आ जाएगा, शाह सुल्तान ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। क्यों, अगर एक कैमरा चोरी कर भी लिया गया है तो क्या हुआ? डॉक्टर हसन मौजूद हैं, वो इस जैसे और कैमरे तैयार कर लेंगे, इमरान ने कहा। डॉक्टर हसन, आप बताएं कि इस कैमरे की क्या अहमियत है? सर सुल्तान ने डॉक्टर हसन से कहा। दरअसल इस कैमरे की चोरी से इसकी टेक्नोलॉजी और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली रेस सामने आ जाएंगी, और फिर इस कैमरे की मदद से पाकिस्तान के तमाम दिफाई और खसूसा एटमी तनसीबात दुश्मनों पर ओपन हो जाएंगी। यहाँ मौजूद तमाम दिफाई आलात की तफसील मय तस्वीर के दुश्मनों तक पहुंच जाएंगी, और फिर उन्हें तबाह करना उनके लिए इंतहाई आसान होगा, डॉक्टर हसन ने कहा। ऐसी सूरत में उसे ओपन क्यों किया गया? क्या जरूरत थी इसका मुजाहरा करने की? इमरान ने कदरे तल्ख लहजे में कहा। मैं इसकी वजह बताता हूँ। पाकिस्तान हथियारों की फरोख से खासा जर मुबादला कमा रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से खरीदारों का रुख दोबारा एक धीमे की तरफ हो गया है, और हमारे तैयार करदा हथियारों की सेल खासी कम हो गई है, जिससे पाकिस्तान को खासा झटका पहुंच रहा था। इस पर सरदावर से इस बारे में बात की गई तो सरदावर ने ये आइडिया दिया। इस तरह पाकिस्तानी हथियारों के बड़े बड़े ऑर्डर मिल गए हैं, लेकिन ये किसी के भी जहन में नहीं था कि इसे इस तरह चोरी किया जा सकता है, जबकि वहां इंतहाई सख्त इकदाम किए गए थे, सर सुल्तान ने तफसील से बताते हुए कहा। समझ गया हूँ मैं, लेकिन इसका साइज, बॉक्स और दीगर तफसीलात कहाँ से मिलेंगी जिससे हम उसे पहचान सकें? इमरान ने कहा। मैं बताता हूँ, डॉक्टर हसन ने कहा। फिर उन्होंने तफसील बतानी शुरू कर दी। कर्नल शाह, आप अब तक की तहकीकात से किस नतीजे पर पहुंचे हैं? इमरान ने कर्नल शाह से मुखातिब होकर कहा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अब तक ये मालूम हुआ है कि रात को कोई गैर मुतल्लका आदमी अंदर दाखिल नहीं हुआ। सिर्फ स्टॉल 11 के 4 गार्ड हलाक पाए गए हैं। इन्हें आम से साइलेंसर लगे मशीन पिस्तल से हलाक किया गया है, जबकि मनुमाइश वाली जगह के गिर्द ऊंची 4 दीवारी मौजूद है, जिस पर हिफाजती बाड़ लगी हुई है, और इसका गेट भी बंद मिला है, और वहां नुमाइश पर अंदर और बाहर बाकायदा मुसल्ला फौजी पहरा देते हैं। ना कोई अंदर गया और ना कोई बाहर आया है, कर्नल शाह ने कहा। क्या हर स्टॉल पर मुसल्ला गार्ड रखे गए थे? इमरान ने पूछा। हाँ, हर स्टॉल पर चार चार मुसल्ला गार्ड थे, जो इस स्टॉल के अंदर रात को पहरा देते थे, लेकिन इस साथ वाले स्टॉलों के गार्ड को भी इस वारदात का इल्म नहीं हो सका। ये सब कुछ इंतहाई पुरेदार अंदाज में किया गया है, कर्नल शाह ने कहा। इस आखिरी मुजाहरे में कौन कौन शरीक थे, उनकी लिस्ट? इमरान ने कहा तो कर्नल शाह ने अपने सामने रखी हुई फाइल उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने फाइल खोली तो इसमें 8 कागजात थे। इनमें से 2 कागजात पर वो फहरिस्त थी। इमरान सरसरी तौर पर उसे देखने लगा और फिर से एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी। ठीक है सर सुल्तान, मैं चीफ को तमाम मामला तफसीलात पहुंचा दूंगा। आखिरी फैसला तो बहरहाल चीफ ने ही करना है, इमरान ने कहा। मेरी तरफ से भी उनसे दरख्वास्त कर देना, सर सुल्तान ने कहा। कर दूंगा, लेकिन अब वहां नुमाइश है तो सब कुछ उठा लिया गया होगा। अब वहां तो कुछ भी नहीं होगा, इमरान ने पूछा। जी हाँ, वो जगह तो खाली हो चुकी है, कर्नल शाह ने जवाब दिया। आप तमाम स्पॉट्स पर चेकिंग जारी रखें, हम दूसरे जावियों से इस पर काम करेंगे। अगर कोई अहम बात हुई तो आप मुझे फोन पर बता दें, इमरान ने कहा। उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो सर सुल्तान का चेहरा यकलख्त खिल उठा। जाहिर है कि इमरान के इनफिकराद के बाद वो समझ गए थे कि इमरान इस केस पर काम करने का फैसला कर चुका है। फिर इमरान से मुसाफा करके कर्नल शाह की दी हुई फाइल उठाए वापस मुड़ा, और थोड़ी देर बाद वो दानिश मंजिल पहुंच गया। क्या हुआ इमरान साहब, आप बेहद संजीदा हैं, लेग जीरो ने एहतरामन रुकते हुए कहा। इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। ओह, ये तो वाकई बेहद खतरनाक और पुरेसरार वारदात है, और इस कैमरे की वजह से वाकई पाकिस्तान की तमाम एटमी और दिफाई तनसीबात ओपन हो जाएंगी। लेग्जियो ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, पहले मुझे इस बात का ख्याल ना आया था, लेकिन फिर जब बात खुली तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये पाकिशे के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अब क्या करना है, इसे कैसे बरामद किया जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर को घसीट कर अपने सामने रखा और फिर इसने फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉलिंग देते हुए कहा। यस टाइगर अटेंडिंग यू बॉस, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज सुनाई दी। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो, ओवर, इमरान ने पूछा। रेनबो क्लब में बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी। यहाँ जंगी हथियारों की नुमाइश लगी हुई थी, क्या तुमने वहां का चक्कर लगाया था, ओवर, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्याल चौंक पड़ा। यस बॉस, मैं कल वहां गया था, कल नुमाइश का आखिरी दिन था, मैं वहां रात 1 बजे तक रहा हूँ। इसके बाद चूंकि नुमाइश का अख्तितम का ऐलान कर दिया गया, इसलिए मैं वापस चला गया, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। वहां स्टॉल नंबर 11 था, जिस पर जंगी और दिफाई मकासद में काम करने वाले कैमरों की नुमाइश की गई थी। क्या तुमने वहां का राउंड लगाया था, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैंने वहां के तमाम स्टॉल अच्छी तरह देखे थे और स्टॉल नंबर 11 में भी तकरीबन नेस घंटा रहा हूँ। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या कोई खास बात हुई है, ओवर, टाइगर ने आखिरकार जहन में उभरने वाला सवाल कर ही दिया। स्टॉल नंबर 11 पर रात को इंतहाई खौफनाक वारदात हुई है। वहां से एक ऐसा कैमरा चोरी कर लिया गया है जिसे उर्फ आम में पिन कैमरा कहा जाता है। इस कैमरे के जरिए कई किलोमीटर तक हर किस्म के रुकावट के बावजूद तस्वीर कशी की जा सकती है, और इस कैमरे के चोरी होने का मतलब है कि इसकी टेक्नोलॉजी भी साथ ही चोरी हो गई है। और अब ऐसे कैमरे तैयार कर लिए जाएंगे और फिर पाकिस्तान के तमाम दिफाई तंसीबात और खास तौर पर एटमी तंसीबात की अंदरूनी तस्वीरें हासिल कर ली जाएंगी। इसके बाद इन तंसीबों के खिलाफ आसानी से काम कार्रवाई की जा सकेगी, ओवर, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ओह यस बॉस, मैंने भी इस कैमरे को देखा था। इसके बारे में एक बड़ा सा पोस्टर वहां लगाया गया था, लेकिन ये कब और किस तरह चोरी हुआ, ओवर, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान ने उसे तफसील बता दी। बॉस, जब मैं वहां मौजूद था तो मुझे मालूम हुआ कि थोड़ी देर बाद वहीं गैर मुल्की वफूद और दिफाई मुबसरीन को जंगी कैमरों के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। मैंने अपने तौर पर इस ब्रीफिंग में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिल सकी। अलबत्ता मेरी वहां मौजूदगी में ही गैर मुल्की वफूद और मुबसरीन की आमद शुरू हो गई थी। इनमें एक इक्रीमियन लड़की भी थी। वैसे तो मैंने इसे देखकर नहीं चौंकता, क्योंकि वहां सभी गैर मुल्की मर्द और औरतें थीं। लेकिन इस लड़की ने वहां मौजूद एक गार्ड से सरगोशी में बात की। मैं करीब ही मौजूद था। इस गार्ड ने भी सरगोशी में जवाब दिया, लेकिन मैं उसका लहजा सुनकर चौंक पड़ा। ये गार्ड मकामी था, लेकिन उसका लहजा खालिसतन अक्रीमियन था। इसने शेरगढ़ और मार्टन के नाम लिए और फिर वो लड़की अंदर चली गई। मैं समझा कि ये गार्ड अक्रीमियन रह चुका होगा, इसलिए मैंने ज्यादा परवाह ना की और वापस चला गया, ओवर, टाइगर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इस लड़की का हुलिया क्या है, ओवर, इमरान ने होंठ चबाकर पूछा। तो टाइगर ने तफसील से हुलिया बता दिया। तुम कभी शेरगढ़ गए हो, ओवर, इमरान ने पूछा। यस बॉस, शेरगढ़ काफ्रिस्तानी सरहद के करीब है, इसे स्मगलिंग की जन्नत भी कहा जाता है, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। वहां कोई मार्टन है, ओवर, इमरान ने पूछा। यहाँ दारुल हुकूमत और शेरगढ़ में एक नहीं कई मार्टन होंगे, क्योंकि मार्टन आम सा नाम है, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। शेरगढ़ से फौरन मालूम कराओ कि वहां कोई क्लब या होटल ऐसा है जिसका मैनेजर या सुपरवाइजर या कोई अहम आदमी मार्टन हो। ऐसा क्लब या होटल जहाँ एक रीमियन औरतें और मर्द आते जाते रहते हो, और फिर मुझे कॉल करके फौरन बताओ, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा। फिर इसलिए उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आपको कैसे ख्याल आया कि टाइगर इस नुमाइश में गया होगा? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक तो वो मेरा शागिर्द है, अगर मैं अम्मा बी के साथ दारुल हुकूमत से बाहर ना होता तो मैं भी लाजमन इस नुमाइश में जाता। दूसरा, टाइगर के अंदर मजीद सीखने की ख्वाहिश मौजूद है, जो तुम्हारी सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान में नहीं है। वो सिर्फ पिकनिक मनाने या कहीं गप्पे हाँकने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा।